وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ہمیں بتایا گیا مسلمانوں کو کہ وہ کہاں شادی کر سکتے ہیں اور کہاں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا شادی کرنے سے. اور اس میں پہلے تھوڑا سا اس کا شان نزول آپ کو بتا دوں کہ اس یہ آیت کب اتری تھی, کیوں اتری تھی, اور اس یہ نہیں ہے مطلب کہ اس کے بعد ہم یہ سوچیں کہ یہ تو ان کے لیے اتری تھی ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں, ایک حکم آ گیا جو قیامت تک کے لیے, آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں. مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ کو اس کا شان نزول بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا تھا. ایک صحابی رسول تھے, ان کا نام مرثد تھا, تو ان کو ایک خاتون تھی عناق نام کی, وہ بہت پسند تھی اور جاہلیت کے زمانے میں اس کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے, کہہ سکتے ہیں گرل فرینڈ تھی ان کی یا جو بھی. تو انہوں نے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں عناق سے شادی کر لوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ آیت تب نازل ہوئی کہ نہیں, لا تنکحوا المشرکات, یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے, یہ جائز نہیں ہے کہ مشرکہ عورت سے کوئی آدمی شادی کرے. اور مشرکہ عورتوں میں کون شامل ہیں؟ جو ستارہ پرست ہیں یعنی پارسی ہیں, یا بت پرست ہیں, بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں یعنی ہندو ہیں, یا ایتھیسٹ ہیں کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں, یا ہمارے نزدیک اور بھی جو بھی کافر ہیں وہ اس کے اندر ہی شامل ہو جاتے ہیں. اس میں ایک ایکسیپشن ہے صرف, اور وہ ہے اہل کتاب کی, وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. لیکن یعنی اہل کتاب جیوز اور کرسچنز کو چھوڑ کے مشرک میں سب شامل ہو گئے. اب وہ اگنوسٹک کیا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آج کل نکل آئی ہیں نا, وہ سارے اس میں شامل ہو گئے جو مشرک ہیں. تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی مسلمان مرد شادی نہیں کر سکتا. ولا امۃن مؤمنۃن خیر من مشرکۃن ولو اعجبتکم, ایک لونڈی جو ہے نا, لونڈی کا سٹیٹس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس سوسائٹی میں, یعنی ایک بالکل نیچے کا طبقہ سمجھا جاتا تھا, ایک بالکل ایسے کہ یعنی سوسائٹی میں ان کا کوئی حیثیت, کوئی مقام, کوئی خاندان, کوئی مالی ان کا سٹیٹس کچھ بھی نہیں تھا. یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لیکن ان میں سے کوئی چیز ایک لونڈی کے پاس نہیں ہے. لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے نا, تو وہ بہتر ہے اس مشرکہ سے. ولو آجبت کم, چاہے تم سب اس کو پسند کرتے ہو. کہا نہیں کہا کہ تم ایک آدمی کو, نہیں کہا جا رہا کہ تم سب, چاہے سوسائٹی میں اس کو کتنا ہی اچھا مقام دیا جا رہا ہے اس مشرکہ عورت کو, کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے, وہ کوئی سیلیبریٹی ہے, وہ کوئی ایکٹریس ہے, وہ کوئی ماڈل ہے, وہ یا حسن چھوڑ کے اس کے پاس مال بہت ہے, بڑی پڑھی لکھی ہے, کریئر میں بہت اوپر ہے, اس کی جاب بہت زبردست ہے, تو بہت اچھی لگ رہی ہے, یا پھر آدمی اس کو, اس سے محبت ہو گئی ہے اور اس کو بس اس کے پیچھے دیوانہ ہو گیا, تمہیں کتنی ہی وہ اچھی لگے کسی بھی وجہ سے, لیکن ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے اس سے. چاہے اس کا دیکھیں آپ سٹیٹس میں کیا ہے, اس کے حسب نصب کیا ہے, اس کے پاس مال کیا ہوگا ایک لونڈی کے پاس, وہ تو ایک لونڈی. یعنی اسلام جب ایمان کا معاملہ آتا ہے تو سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ایمان کی جو ہے نا ویلیو, وہ سب سے اوپر ہے, یاد رکھیے یہ بات. چاہے کسی کے پاس کچھ بھی اور چیز نہیں ہے, لیکن اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ بہتر ہے کسی بھی مشکل سے. اور دس اپلائز ٹو ادر فیلڈز آلسو, کہ آپ جو ہیں, جیسے کچھ لوگ بہت آرام سے یہ بولتے تھے ہم سے تو یہی اچھے ہیں, مسلمانوں سے تو یہ مشرک اچھے ہیں. نہیں, ہاں آپ اس چیز میں کہہ سکتے ہیں کہ اخلاق میں یہ لوگ ہمارے لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں, یا معاملے میں کسی میں یہ, لیکن اوور آل آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک مشرک بہتر ہے. دیکھو ہم سے تو یہ اچھے ہیں, کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایک مسلمان کے پاس ایمان ہے اور دوسرے کے پاس ایمان نہیں ہے, اس کے پاس چاہے دنیا کی ہر کوالٹی کیوں نہ موجود ہو, اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. یہاں پہ یہ آیت اس چیز کو آپ کو پروف کرتی ہے ये देखो आगे भी आएगा कि जो गुलाम मोमिन है वो बेहतर है एक मुशरिक आदमी से। तो इसको आप हर जगह पे समझ सकते हैं कि सिर्फ शादी के लिए नहीं, आप वैसे भी आप ये कह सकते हैं, ये आप जो सबका एक ही सफाया फेर देते हैं और कह देते हैं बस देखिए आज के दौर के अंदर तो ये नहीं, ये नहीं बोलना चाहिए, ये सही नहीं है। इसका मतलब आपको पता ही नहीं कि ईमान की कदरों कीमत क्या होती है। ईमान चाहे जर्रे बराबर भी होना, जर्रे बराबर भी ठीक है, बहुत बुरे मुसलमान वाकई आज के हालात में बहुत ही उनका यानी किरदार अखलाक मामला का जनाजा निकल चुका है, लेकिन अगर ईमान जर्रे के बराबर भी होगा ना तो याद रखिए वो जहन्नुम से निकालने के लिए काफी होगा, लेकिन शिर्क वो कभी भी जहन्नुम से निकलने वाला नहीं है जो मुशरिक होगा। इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि ईमान की वैल्यू क्या है, इवन जर्रे बराबर ईमान की भी वैल्यू है, जर्रे बराबर भी। तो किसी के पास कुछ भी नहीं होता, जर्रे बराबर ईमान है। अगर जर्रे बराबर भी है ना तो वो बेहतर है एक मुशरिक से। अब ये जो आयत है ना, हो सकता है हम जब बैक होम अपने मुल्कों में होते थे तो वहां पर जो इस्लामी मुल्क से किसी से ताल्लुक रखते हैं तो वो वहां पर ये इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं थी, क्योंकि वहां पे लोग शादी ही नहीं करते मुशरिक से, और सभी मुसलमान होते हैं, सब मुसलमानों से करते हैं। लेकिन जब हम दूसरे मुल्कों में रहते हैं, जो भी गैर मुस्लिम मुल्क में रह रहा है, चाहे वो कोई हिंदू मुल्क है, चाहे वो क्रिश्चियन मुल्क है, चाहे वो कोई मुल्क है, उन मुल्कों के अंदर ये आयत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर मिली जुली सोसाइटी होती है, मिक्स्ड सोसाइटी में आप लोग रहते हैं, वहां पर आपका मेल जोल जब मर्दों का ऐसी औरतों से होगा, औरतों का ऐसे मर्दों से होगा, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाए, एक दूसरे की कोई बात अच्छी लग जाए, उसमें इंटरेस्टेड हो जाए और उसे शादी करना चाहे। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि मालूमात ये होनी चाहिए, और हम अपने बच्चों को उठते बैठते उनके कानों में ये बात पहुंचाते रहें कि मुसलमान मर्द की एक मुशरिक औरत से शादी नहीं हो सकती, और मुसलमान औरत की मुशरिक मर्द से शादी नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैं उसकी तरफ भी आती हूँ जो आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि व्हाट अबाउट क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, और ये बस उसकी तरफ आते हैं। अभी पहले आप इस बात को समझ लें कि साफ तौर पे बता दिया गया कि वो ईमान ले आए तब शादी हो सकती है, उसके बगैर नहीं हो सकती। अब पहला क्वेश्चन ये आता है, जब कोई ईमान लेकर आता है यानी कोई जाके शहादा ले लेता है तो फौरन हमारे लोग क्या कहते हैं, लो शादी के लिए इस्लाम लाया, तो ये कहने का हक हमें नहीं है, इसलिए कि हमने किसी का दिल चीर के नहीं देखा। इसके लिए आपको वो हदीस याद दिलाऊंगी कि एक सहाबी जब जंग में थे और काफिर के ऊपर तलवार उठाने लगे, उसका उसके हाथ से उसका हथियार गिर गया था, अब ये तलवार उठाने लगे उसको खत्म करने के लिए तो उसने फौरन कलमा पढ़ लिया, तो इन्होंने फिर भी उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि उसने ऐसे किया था, तो आपने फरमाया तुमने क्यों उसको कत्ल किया, तो कहने लगे कि वो उसने कलमा इसलिए पढ़ा था अपनी जान छुड़ाना चाहता था, ऑब्वियस तो यही रीजन नजर आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तूने उसका दिल चीर के देखा था, अब तुम क्या करोगे जब कयामत के दिन उस कलमे को वो लेकर आ जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गुस्से में हुए कि वो फरमाते हैं कि मैं कह रहा था काश मैं आज इस्लाम लेकर आता कि मेरा पिछले गुनाह धुल जाते, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर ज्यादा उनसे नाराज हुए कि तुमने उसका दिल चीर के देखा था। तो हम में से किसी ने किसी का दिल नहीं चीर के देखा होता। हाँ ये जरूर करना चाहिए कि अगर ऐसा कोई मामला आ जाए तो दूसरे को कहना चाहिए आप इस्लाम को स्टडी करें, कम से कम उसको एक टाइम दे, 1 साल का टाइम दे दें या कुछ, आप इस्लाम को स्टडी करें उसके बाद बताएं इस्लाम के बारे में आपके क्या ख्याल आते। ऐसे नहीं कि अगर मुझसे शादी करनी तो चलो आओ मस्जिद में आके ये बस पढ़ लो और उसके बाद काफी है, ये तो एक रस्म ही पूरी करनी है तुमने, और ना उसको पता है मैं बोल क्या रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत पर ईमान लाने का मतलब क्या है, कुछ पता नहीं, और तुम पढ़ लो ताकि हमारी शादी तो हो नहीं, तो ये एक सही बात नहीं है। क्योंकि ये चीजें ये आज तो बड़ी भली लगती हैं, ये लॉन्ग टर्म में क्या इसके नुकसान आते हैं ये अल्लाह ताला को मालूम है और ये आयत में बताए गए हैं, वजह बताई गई है। पहले आगे देख लेते हैं, वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, और ना तुम निकाह करा के दो मुशरिक मर्दों से, मुशरिक मर्दों का को करके दो मुशरिक मर्दों को, यहां तक कि वो ईमान ले आए। यानी तुम ना निकाह करा के दो, करा के दो का मतलब क्या, यानी अपनी बेटियों का ना निकाह करा के दो मुशरिक मर्दों से, यहां तक कि वो ईमान ले आए। यहां पे क्यों वो वर्ड क्यों नहीं आया, वला तनकिहू वहां आया तो यहां वला तनकिहू क्यों नहीं आया? मैं आपको बताया वो नकहा से है या अनकहा से है। नकहा का मतलब होता है खुद निकाह करना, अनकहा का मतलब होता है निकाह करा के देना। फर्क समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब है यहाँ पे औरतों को जाहिर कहा गया ना, क्योंकि औरतों के लिए कहा गया, क्योंकि आगे मर्दों की बात आ रही है, मुशरिक मर्दों से ना करा के दो। इसका मतलब अपनी कोई बेटियां हैं या अपनी बहनें हैं तो इनका ना निकाह करा के दो मुशरिक मर्दों से। तो औरतों को क्यों नहीं कह दिया कि ला तनकी हो, तुम ना करना, जैसे मर्दों को कहा गया। इसलिए कि औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती, उसकी निकाह की शरायत में शर्त है वली की रजामंदी। ठीक है, औरत की अपनी रजामंदी भी जरूरी है, लेकिन जो फाइनल ओके करेगा वो उसका वली करेगा। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना निकाह का, याद रखें वो औरत और आदमी के दरमियान नहीं होता, ये आपको पता है, ये औरत के वली और दुल्हा के दरमियान होता है। ये शायद नहीं लोगों को मालूम, तो अगर वली ना हो तो ये कौन सा निकाह है? बास तो इसको बातिल कहते हैं कि ये निकाह हुआ ही नहीं, बास कहते हैं ये फासिद है। ये वली के बगैर निकाह हो जाए तो इससे अच्छा, आजकल क्या होता है कि वली मौजूद है लेकिन अदालतें बन चुकी हैं, वो कहते हैं वली के बाप और या ये भाई या जो भी सरपरस्त है इनकी तो जरूरत है नहीं, अदालत ही है जो कि आपकी वली है, इसलिए भाग के आ जाए और वहां पे शादियां कर लें। तो ये दुरुस्त नहीं है, वो कैसे वली बन सकती जबकि वली मौजूद है। हाँ, किसी का कोई भी नहीं आगे पीछे तो हाँ, तब हकूमत या काजी वक्त उसका वली बनेगा, लेकिन जिसका सरपरस्त मौजूद है, उसका बाप है, उसका भाई है, उसका चचा है, ताया है, ये रिश्ते मौजूद हैं, उसका कोई दादा है, ये सब वली बन सकते हैं। तो ये इनकी मौजूदगी में कोई लड़की जाके अदालतों से निकाह कराए तो वो दुरुस्त नहीं होगा। तो ना तुम निकाह करा के दो मुशरिक मर्दों के साथ, हत्ता के वो ईमान ले आए, वो मुशरिक मर्द ईमान ले आए। अब कोई हिंदू है या कोई और एथिस्ट है, जब तक कि वो ईमान ना ले आए, और ईमान का मतलब है कि उसका दिल वाकई कायल होना चाहिए। अब उसको ये नहीं कि हमने बस ये चार कलमे पढ़ा दिए, ये चार अल्फाज कहलवा दिए और हमने कहा कि बस तुम मुसलमान हो गए। आप समझ आ रही है ना? वला अब्द मोमिन खैरुम मिन मुशरिकिन वला वाजबकुम, और याद रखो गुलाम मोमिन, गुलाम कैसे होते थे उस जमाने में, जैसे लौंडियां इस तरह ही गुलाम होते थे, ना कोई स्टेटस, ना कोई माल, कोई कोई हसब नसब नहीं, कोई उस सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि उसके पास ईमान है, वो इस मुशरिक आदमी से बेहतर है, चाहे तुम्हें ये मुशरिक कितना ही पसंद आता हो। बस हम किसी को एक मुल्क में कोई पसंद आ गया, अब उसके मुल्क में कोई ईमान वाला है, कोई मुसलमान है, जो यहाँ पे उसको कोई नहीं मिल रहा, वो कह रही मुझे यहाँ पे कोई मुसलमान मर्द मिलता ही नहीं, अब ये इस मुशरिक से ही मैं शादी कर लूँ। बैक होम उसको कोई ऐसे, कोई आज के तो गुलाम है नहीं, लेकिन मसलन कोई बिल्कुल गांव का, कोई इतना वो हैसियत में बहुत ज्यादा नहीं है, गरीब है, इतना ज्यादा वो नहीं है उसके पास कोई माल वगैरह या हैसियत वगैरह, तो वो बेहतर होगा अगर उसके पास ईमान है। चाहे वो कहें कि वो तो पेंडू है, वो ऐसा है, नहीं, वो बेहतर है, ये अल्लाह ताला का फैसला है। वो इस मुशरिक से इसलिए बेहतर है कि उसके पास ईमान है। और मुशरिक की क्या वजह है, वो तो इतने अच्छे लगते हैं, वो तो इतना हैंडसम है, वो तो इतना पढ़ा लिखा है, या वो उसकी तो जॉब इतनी अच्छी है, या तो वो उसका करियर आगे बड़ा शानदार नजर आ रहा है, उसके पास पैसा बहुत है, इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई ये है कि उलाई का यदहमुना इलन्नार, ये बुलाते हैं आग की तरफ, वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइस्मिही, और अल्लाह बुलाता है जन्नत की तरफ और मगफिरत की तरफ अपने इज़्ज़त के साथ। इसके साथ शादी करोगे तो जाहिर है जब मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है, कितना क्लोजनेस का रिश्ता है, कितनी मोहब्बत का रिश्ता है, इससे ज्यादा क्लोज क्या रिश्ता होगा। जब इतने क्लोज कोई रहते हैं ना, इतना साथ रहते हैं और मोहब्बत भी होती है आपस में, तो लाजमी तौर होगा कि या तो ये उससे मुतासिर हो जाएगा या वो इससे मुतासिर हो जाएगी। अब हम कह सकते हैं हो सकता है वो भी तो बाद में इस्लाम ले आए, लेकिन अब इसके अंदर क्या एक और चांस है, हो सकता है ये लड़की उस तरफ चली जाए, या ये लड़का जो मुसलमान है वो हिंदू के साथ शादी करके उसके दीन को अपना ले, अपना दीन छोड़ दे, ये भी तो चांस है ना। तो जब शरीयत में इस तरह का होता है तो फिर नुकसान से बचने के लिए पहले ही ऐसे रास्ते को बंद कर दिया जाता है कि नहीं वो रास्ते पे जाना ही नहीं, क्योंकि इसमें चांस ये है कि तुम अपनी ईमान को खो दोगे, और अगर ईमान को खो दिया तो क्या है, आग है हमेशा की आग जहन्नुम है, तो वो तो तुम्हें जहन्नुम की तरफ बुला रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने दीन के ऊपर कायम रहेंगे, और वो तुम्हें जाहिर है इंसान मसलन है किसी मुशरिक के साथ कोई शादी कर लेता है तो घर में बुत भी आएंगे, उसकी पूजा भी होगी, अगर नहीं चलो बुत आते आप कहते हैं नहीं जी वो भी इतना नहीं प्रैक्टिस करता अपने दीन को, तो तब भी क्या होगा, वो अपने रिलीजन के और मरासिम, अपने जो भी जो उनके सेलिब्रेशंस हैं, जो उनकी चीजें हैं, उनको तो पूरा करेगा ना, उसके मुताबिक तो चलेगा, अपने मंदिर हैं या अपने और जगह उन पे तो जाएगा, नहीं तो अपने अपने अपनी जो उनके फेस्टिवल्स हैं वो मनाएगा, तो क्या होगा फिर, जो कराहत है शिर्क की जैसे होनी चाहिए वो नहीं रहेगी, क्योंकि कराहत के साथ तो आप दो लोग रह ही नहीं सकते आपस में। अगर आपके दिल में नफरत है, जैसे नफरत शिर्क से होनी चाहिए, तो अगर वो नफरत है तो ऐसे बंदे के साथ कैसे रहेंगे जो वो ही काम कर रहा है, तो ये तो रिश्ता फिर चल ही नहीं सकता। जाहिर है अपने दिल से उस नफरत को दबाना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, तो तब उसके साथ चल सकते हैं ना। तो अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता है, मगफिरत की तरफ बुलाता है, वो नहीं चाहता कि तुम आग की तरफ चले जाओ, ये तुम्हें आग की तरफ बुलाती है। इसी तरह जो लोग ऐसे लोगों को दिली दोस्त बना लेते हैं, एक होता है एक सोसाइटी में रहते हुए किसी के साथ चलना, वो सबके साथ अच्छी तरह चलना, लेकिन एक होता है बेस्ट फ्रेंडशिप, एक होता है उनके साथ ऐसी एसोसिएशन जैसे कि आप अपने गहरे दोस्तों के साथ राजदार उनको बना लेना, उनके साथ गहरी दोस्तियां करना, तो वो तो आपको आग की तरफ बुलाते हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो उनको भी इतनी सेंस नहीं है कि वो आग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमें तो पता है ना, हमें तो पता ही आग का सौदा है, और उनके रास्ते पर चलने का मतलब है आग की तरफ जाना, और अल्लाह बचाना चाहता है वो जन्नत की तरफ बुलाता है, वो मगफिरत की तरफ बुलाता है। और युबय्यिनु आयाती ही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, अल्लाह बयान करता है इन आयात को, अपनी आयात को लोगों के लिए ताकि वो नसीहत पकड़े, उनको समझ आए कि इसमें नुकसान है, लेकिन उस वक्त जिस वक्त जज्बात हाइप अप होते हैं ना, उस वक्त इंसान कहता है नहीं कोई बात नहीं, बस इसी के साथ मैंने शादी करनी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो फिर उसको इस्लाम की तरफ लेकर आओ, इस्लाम की दावत दो, अगर उसको इतनी मोहब्बत होगी तुमसे तो वो इस्लाम कबूल कर लेगा, लेकिन मुशरिक से शादी नहीं हो सकती। अब जहां तक आपके जहन में जो सवाल आ रहे होंगे अहले किताब के बारे में, क्रिश्चियन और ज्यूस के बारे में, वो वैसे तो हम सूरह माईदा में पढ़ेंगे जाके इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही तो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको उसके बारे में बता देती हूँ कि अहले किताब से मर्द तो शादी कर सकता है, औरत तो अहले किताब से भी नहीं कर सकती, यानी औरत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान से कर सकती, वो किसी और से भी नहीं कर सकती, मर्द क्रिश्चियन और ज्यू से शादी कर सकता है। अच्छा अब अभी आपको और भी थोड़ी सी मुझे पता है कि जहन में काफी बातें आ रही होंगी, लेकिन क्यों ऐसी बात है, अब बाज औरतों को होगा हाई हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो गई, इसलिए कि देखा जाए तो देखें घर के अंदर जो निजाम चलता है या घर में जो होल्ड होता है ना वो आदमी का होता है, कोई कोई घर होता है जिसमें औरतों के होल्ड होते हैं, मगर ज्यादातर आदमी का असरो रसूख होता है, उसका जिसको कहेंगे उसका इंप्रेशन घर में ज्यादा होता है, उसका होल्ड ज्यादा होता है, वो जिस तरफ को चाहता है उधर को ले जाए, तो इसलिए औरत कमजोर चूंकि होती है, जज्बाती भी होती है, इमोशनली भी वीक होती है, उसको इस चीज में नहीं डाला गया, वरना उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती कि वो कैसे दूसरे को लेकर आए, वो तो उसके रंग में रंग जाते। आदमी इमोशनली मेंटली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अच्छा, अब उनको भी जो इजाजत दी गई, अब एक बात इसके अंदर और सुन लें। हजरत उमर के दौर के अंदर जब मुसलमानों ने फतुहात की तो बहुत सारे मुसलमान मर्द अहले किताब की औरतों से शादी करने लगे, जिसके पर हजरत उमर ने इस चीज को फिर बैन कर दिया था, ये देखते हुए कि जो इसके असरात हो रहे थे। पहली बात ये समझनी चाहिए कि अगर आप इस मुल्क में रह रहे हैं जिसमें जो इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों, मसलन आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, वहां पे अगर आप किसी क्रिश्चियन से शादी करते हैं तो वो एक बिल्कुल अलग बात है, और आप एक गैर मुस्लिम मुल्क में रह रहे हैं, मसलन आप एक क्रिश्चियन ही मुल्क में रह रहे हैं और वहां पे किसी क्रिश्चियन औरत से शादी करते हैं, तो वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट बात है। क्या डिफरेंस है? इस्लामी मुल्क में रहते हुए हर तरफ मुसलमान है और उस औरत का चांस ज्यादा है कि वो इस्लाम ले आएगी, या इस्लाम से मुतासिर होगी, या इस्लाम को जान पाएगी, या वो अपनी प्रैक्टिसेस को तर्क करेगी, या उनमें इतना ज्यादा नहीं हिस्सा लेगी, क्योंकि हर तरफ एक ईद भी है, हर तरफ एक अपना अजान भी है, हर तरफ एक कुरान की आवाज भी है, हर तरफ एक मुसलमान मामलात भी हो रहे हैं। जबकि क्रिश्चियन मुल्क में रहते हुए ऑलरेडी वहां पे इस्लाम माइनॉरिटी होता है, और वहां पे अगर ऐसी औरत से कोई शादी कर लेगा तो वो अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल इसलिए क्रिएट करेगा कि माहौल सारा गैर मुस्लिम है, माहौल सारा अहले किताब का ही है, और वो अपने अहले किताब के मुताबिक ही चलती रहेगी। माहौल उसको सपोर्ट कर रहा है, माशरा उसको सपोर्ट कर रहा है, और ये आदमी ज्यादा देर तक इस चीज को नहीं सस्टेन कर सकेगा, क्योंकि जब बच्चे होंगे तो वो औरत जिस माहौल में रह रहा है वो माहौल भी उन बच्चों को सपोर्ट कर रहा है, और वो औरत भी घर में रहते हुए उसी तरफ को लेकर जा रही है, तो बच्चों का क्या चांस होगा? सिर्फ एक आदमी बीच में कैसे उनको इस तरफ लाएगा, इस्लाम की तरफ? इसलिए जिस माहौल में रहते हुए मुसलमान के लिए भी अपने ईमान को बचाना बाज औकात मुश्किल हो जाता है, और वो भी उनके रंग में रंग जाते हैं जैसे माहौल में वो रह रहे होते हैं, कहाँ एक ऐसी औरत घर ले आई जाए जो कि फिर आगे भी बच्चों की तरबियत भी वैसी करे। और बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं कि जहां पे अहले किताब की औरतों के साथ शादी की और उसके बाद नतायज देखे, नतायज लोगों ने भुगते कि जब औलाद हुई तो वो माँ बच्चों को उस तरफ खींच रही थी, बाप ने खींचने की कोशिश की लेकिन बाप नहीं खींच सके। एक वाकया है यहाँ पे जिसमें किसी ने इसी तरह की एक शादी की हुई है, और वो उसने उस औरत को अब जाके कहा कि तुम ऐसा करो इस्लाम ले आओ, तो उसने साफ आगे से जवाब दिया, क्यों, तुम क्यों नहीं ईसाई बन सकते, तुम छोड़ दो इस्लाम को, मुझे क्यों कह रहे हो, और अभी उनके बच्चे नहीं है, और इसके बाद जब बच्चे होंगे तो वो चर्च ले जाना चाहेगी, मस्जिद ले जाना चाहेगा, तो होगा क्या, बच्चे कहीं के भी नहीं रहेंगे, या फिर वो चर्च चले जाएंगे, क्योंकि इस्लाम की सपोर्ट तो ऐसी नहीं हो रही, कोई इस्लामी माशरा तो है नहीं। और एक अहम तरीन बात जो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये कि अहले किताब कहते किसको है। एक आपके जहन में ये भी सवाल होगा ना कि अहले किताब क्या है, ये अहले किताब है क्या है। अहले किताब के लिए भी क्राइटेरिया है कि वो अल्लाह को मानता हो, ईसा अलैहि सलाम को, अगर ईसाई है तो ईसा अलैहि सलाम को मानते हो और कयामत के दिन को मानते हो, तब है वो ईसाई। ये नहीं है कि अगर आज के कोई क्रिश्चियन हो और वो कह रहे हैं कि हम तो कोई नहीं खुदा को मानते, या हम तो डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव ही नहीं करते, तो वो नहीं है ईसाई, वो तो फिर कुछ और ही है, उनको तो ईसाई भी नहीं ईसाई मानते फिर, ठीक है। तो अगर यहाँ ज्यूज हैं तो वो भी इन तीन चीजों को मानते हैं, और बहुत से लोग आज कहने को ईसाई और यहूदी हैं लेकिन वो इनमें से अक्सर चीजों को नहीं मानते। अब आप ये सोचेंगी और कहेंगी कि मुशरिक ये भी तो अहले किताब ही तो मुशरिक ही हुए फिर, क्योंकि वो भी तो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा और इस तरह नऊज़ु बिल्ला कहते हैं या ऐसी बात करते हैं, तो इसकी दलील हम कुरान से ही लेते हैं। कुराने पाक में जहां पर अहले किताब की बात आई, वहां अहले किताब को अलग से बात की गई और मुशरिकीन की अलग से बात की गई, ठीक है। जैसे आप 105 आयत में पढ़ चुके हैं, माय अबदुल्लदीना कफरू मिन अहले किताबी वलल मुशरिकीना, काबरों में से अहले किताब और मुशरिकीन, यानी मुशरिकों को अलग मेंशन किया गया और अहले किताब को अलग मेंशन किया गया, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी अहले किताब जो थे वो शिर्क करते थे, लेकिन उनको मुशरिक नहीं कहा गया, उनको फिर भी पीपल ऑफ द बुक कहा गया, अहले किताब कहा गया। ठीक है, तो ये तीन चीजों को अगर वो मानते होंगे, अल्लाह को, अपने प्रॉफिट को और डे ऑफ जजमेंट को, तो तब वो क्रिश्चियन है या तब वो ज्यू है। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर भी याद रखें कि औरत फिर भी शादी नहीं कर सकती किसी भी क्रिश्चियन से और ना ही किसी ज्यू से वो शादी कर सकती है। और मैंने आपको बता दिया, देखें एक चीज होती है किसी चीज का हलाल होना, परमिसिबिलिटी होना, और एक चीज है कि वो चीज आपके लिए ठीक है कि नहीं है। मसलन है, मिसाल के तौर पे गो का गोश्त, गो जो है ना वो ठीक है, हलाल है, एक मकरूह है लेकिन हलाल है। तो आप खाते हैं क्या? नहीं खाते ना, तो क्या जरूरी तो नहीं कि हर हलाल चीज आपका है। मसलन ना ऊंट का गोश्त है, आपने नहीं कभी खाया होगा, लेकिन हलाल है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हलाल होती हैं, लेकिन आपने देखना है कि मेरे लिए वो ठीक है कि नहीं है। अब आप देखें कि आज के मुआशरे के अंदर जिन मुल्कों में, गैर मुस्लिम मुल्कों में आप रहते हैं, वहां पर अगर आप अहले किताब से शादी कर लेंगे तो वहां पे क्या हाल होगा? और आज के जज्बात को नहीं देखना होता, आगे की फ्यूचर तक में देखना होता है कि नस्लों तक पे इसको क्या असर होगा, और उसके बाद लोगों को देखा कि वो रोते हैं। अब वो तो जज्बाती वक्त तो गुजर गया, लेकिन बेड़ा गर्क कर दिया अपनी नस्लों तक का। तो इसलिए मर्द और औरत को इसके अंदर बहुत केयरफुल होना चाहिए। जब पता है कि इस गांव में जाना ही नहीं, तो उसके रास्ते को भी अपनाने की क्या जरूरत है? ठीक है ना, जिस गली में जाना ही नहीं है उस तरफ को रुख करने की भी क्या जरूरत है? तो पहले से ही केयरफुल होना चाहिए कि नहीं, ये रास्ता बंद है। और ये बच्चों को अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये सारी मसाइल जो हैं वो शादी से, औरतों के मसाइल, तलाक, निकाह, इन सब से मुतल्लिक अब हम पढ़ रहे हैं, तो उसी के अंदर आपस में ताल्लुक का मामला भी आ गया। जाहिर है निकाह होगा तो मियां बीवी का आपस में ताल्लुक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, वयसअलूनक अनिल महीद, वो आपसे सवाल करते हैं हैज के बारे में। हैज कहते हैं हौज, जैसे आप कहते हैं ना हौज, हौज होता है बहना, पानी का बहना, उसी से हैज है। कि यानी हैज की हालत में औरतों के पास हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, यानी उनसे कितना ताल्लुक रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कुल कह दीजिए, हुआ अजन, वो अजियत है या निजासत है, तकलीफ है। असल में क्यों ये सवाल पैदा हुआ? क्योंकि यहूदियों के साथ एक माशरे में लोग रह रहे हैं, और मुशरिकीन के साथ भी यही होता था कि यहूदी तो औरतों को अछूत बना लेते थे पीरियड्स के दिनों में। वो उनसे ना खाना पकवाते थे, ना वो कोई चीज को टच कर दें तो समझते थे ये नापाक हो गई, यानी उनकी पूरी बॉडी नापाक है। एक बात याद रखिए, औरत की बॉडी नापाक नहीं हो जाती। हुआ अजन, क्या चीज अजन है यहाँ पे, क्या चीज निजासत है, क्या चीज नापाक है? बॉडी को कहा गया नहीं, हैज, हैज जो खून है ना वो नापाक है। वो खून अगर किसी चीज के ऊपर लगेगा तो उसको धो दिया जाए, किसी बिस्तर पर लग गया, कपड़े पे लग गया, तो वो उसको धो दिया जाए और उसमें आप फिर नमाज पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि औरत का जिस्म नापाक हो गया। हम क्या समझते हैं आज हमारी भी औरतों के दिमाग में क्या है कि बस जिस्म नापाक हो गया है, जान नमाज नहीं पकड़ सकते, तस्बीह को हाथ लगा दिया तो हमारा जिस्म नापाक है, ये नहीं है। ठीक है, तो वो खून नापाक है। खून नापाक होने की वजह से कई रिस्ट्रिक्शंस लग गई, दी गई, क्योंकि अब आप उस तरह से पाकी नहीं इख्तियार करते। जैसे वुजू कर भी लेंगे तो वुजू नहीं है, यानी पाक नहीं आप हो गए। आपने गुसल कर भी लिया तो आप पाक नहीं हो गए, और कई चीजों को करने के लिए आपको वो तहारत की हालत चाहिए। तो वो नहीं होगी, वरना ऐसे नहीं कि नजस हो गई इस औरत को उठा के किसी एक तरफ कर दो और इसके साथ ना तो कोई ताल्लुक कर सकते हैं, यानी इस तरह का कि इसको टच करें, ना उसके साथ गले मिल सकते हैं, ना उसके साथ कोई, क्योंकि ये तो इसके साथ कोई भी हाथ इसको लगा देगा तो वो भी नापाक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बताया गया कि वो नापाकी है। तो फाताजिलुन्निसा फिल्माही, तो ऐसा करो औरतों से अलग रहो हैज में। अलग रहो से मतलब क्या है, ये नहीं कि उनके साथ ताल्लुक खत्म कर देना, बल्कि अलग रहो मतलब है कि उनके साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, उनके साथ जो मियां बीवी का ताल्लुक है वो कायम नहीं कर सकते, बस ये बात है। अदरवाइज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ एक ही कपड़े में, यानी एक बिस्तर में, एक कपड़े में, जैसे एक रजाई है या एक चादर है या एक कंबल है, उसके अंदर ही अपनी बीवियों के साथ सोते भी थे। तो अगर उसके छूने से नापाकी हो जाती तो फिर तो ये बड़ा मसला हो जाता। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से एक उनकी सहाबी हैं हजरत अम्मारा, उनकी फूफी हैं, तो वो सवाल करती हैं कि अगर औरत हैज की हालत में और घर में मियां बीवी का एक ही बिस्तर हो तो वो क्या करें, यानी इस हालत में इसका खामिंद के साथ सो सकती है या नहीं। फरमाया, सुनो, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए, आते ही अपनी नमाज की जगह तशरीफ ले गए और नमाज में मशगूल हो गए, ज्यादा देर लग गई और इस अरसे में मुझे नींद आ गई, आपको सर्दी लगने लगी तो आपने मुझसे फरमाया इधर आओ। मैंने कहा मैं तो हैज से हूँ। आपने मेरे घुटनों के ऊपर से कपड़ा हटाने का हुक्म दिया और मेरी रान पर रुखसार और सीना रखकर लेट गए, मैं भी आप पर झुक गई तो सर्दी कुछ कम हुई और इस गर्मी में आपको नींद आ गई। यानी इसका मतलब क्या है कि इस हालत के अंदर औरत ऐसी नापाक नहीं है कि उसके जिस्म पे अगर कोई लेट जाए या हाथ रख ले या कुछ है तो उससे वो नापाक हो जाए, बल्कि यहां तक ताल्लुक अलग रखने का मतलब यहां से आपको पता चल गया ना कि यानी ये चीज मना नहीं है, सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक मना है। इसी तरह हाइजा औरत के साथ बैठना, उसके साथ खाना पीना या वो चीजों को कोई घर में हाथ लगाए, कुछ उससे नापाकी नहीं होगी। आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं सर भी धोया करती थी जब मैं हैज में होती थी, आप मेरी गोद में टेक लगा के लेट के कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे हालांकि मैं हैज में होती थी, मैं हड्डी चूसती थी और आप भी उसी हड्डी को वही मुंह लगा के चूसते थे, और मैं पानी पीती थी फिर जिस प्याले से पानी पिया होता था उसको भी आप वहीं से मुंह लगा के वहीं से पानी पीते थे और मैं हैज से होती थी। तो यानी अगर झूठ हो गई या अगर नापाकी थी तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वहां से हड्डी चूसते या वहां से ही अगर मुंह लगा के पानी पीते तो फरमाते कि ये इसमें नापाकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। और अबू दाऊद में रिवायत है कि फरमाती है मेरे हैज के शुरू दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही लिहाफ में सोते थे, अगर आपका कपड़ा कहीं से खराब हो जाता तो आप इतनी ही जगह धो देते, अगर जिस्म मुबारक पर कुछ लग जाता तो उसे भी धो डालते और फिर इन्हीं कपड़ों में नमाज पढ़ते थे। यानी अब औरत हैज वाली साथ सोई भी है तो कभी हो सकता है कि उसका खून लग जाए, लेकिन देख ले नबी अलैहिस्सलाम कितने कंपैशनेट थे अपनी बीवियों के साथ ना, कितनी कितना मोहब्बत, कितना केयर और कितनी सेंसिटिव थे अपनी बीवियों के मामले में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नहीं वो कराया फील कि अब तुम गंदी हो, अब तुम इधर से पीछे हटो, क्या नापाकी और क्या नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा पाक कौन इंसान हो सकता है, तहारत रखने वाला कौन इंसान हो सकता है, लेकिन अपनी बीवियों के साथ सोते भी थे, यानी उनके कपड़े पे खून भी लग जाता था वहां से धो के उसमें नमाज पढ़ लेते। और आज औरतें खून नहीं भी लगता, वो कहती नहीं ये कपड़े हमने अपने पीरियड्स के दिनों में पहने थे तो अब इनको सबको लॉन्ड्री करो, इसके बाद सब धोएंगे, बिस्तर भी सब धुल रहे हैं क्योंकि इसमें हैज के दिनों में हम सोए थे। तो ये अपने ऊपर खाम खा का एक बोझ डालना है, हालांकि आपके ना वो कपड़े ना पाक हुए, अनलेस के उसके ऊपर खून लगा है, तब भी पूरा कपड़ा नहीं धोए, उतनी जगह को धो ले कपड़ा पाक हो गया, ठीक है, वो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने बिस्तर को भी धोने की जरूरत नहीं, अनलेस उसके ऊपर जाहिर है कोई खून लग गया तो फिर उतनी जगह को धो सकते। तो ये हमारे लिए कितनी जरूरी बातें हैं जाननी, लेकिन ना तो बच्चियों को ये बातें बताई जाती हैं, ना उनको शादी से पहले ये बातें इसमें एजुकेट किया जाता है कि आदमी औरत के साथ ताल्लुक नहीं कर सकता हैज की हालत में, इंटरकोर्स नहीं हो सकता, हाँ बाकी सब चीजें हो सकती हैं। है, लेकिन जो नाफ से लेके ये घुटने तक का हिस्सा है, यहां तक रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और इसी तरह अगर एक जगह पे रिवायत आती है बाज जगह के, जो अपनी हाइजा बीवी से उसकी हैज की हालत में सेक्सुअल ताल्लुक कर ले, तो वो 1 दिनार या आधा दिनार सदका दे। दूसरा कॉल ये है कि कफारा कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह से तौबा इस्तगफार कर ले। बाज ने कहा कि अगर तो खून सुर्ख था, यानी मिड ऑफ द पीरियड्स में किसी ने ऐसा काम किया, तो 1 दिनार सदका करे, और अगर एंड हो रहा था तो आधा दिनार करे। अब जर्द रंग का खून हो गया तो आधा दिनार करे। दूसरों ने कहा कि नहीं, आप सिर्फ तौबा इस्तगफार ही कर लें। तौबा इस्तगफार के साथ इंसान कुछ ना कुछ सदका कर दे, अच्छी बात है, ताकि इंसान सदका करता है, अल्लाह ताला की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। हजरत मैमूना और आयशा रजी अल्लाह ताला का ये फरमाना है कि हम में से जब कोई हैज से होती तो तहबंद बांध लेती, यानी अपना कपड़ा नीचे बांध लेती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपकी चादर में सोती। ये इस बात को साबित करता है कि ये बाकी कामों से ये चीज मना नहीं करती, ठीक है। जब आप देखें, अजन से एक और भी मतलब है कि यानी ये एक तकलीफ है औरत के लिए। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने औरत की कितनी रायत की है कि मर्दों को बताया कि ये उसके तकलीफ के दिन है, यानी एक डिसकंफर्ट है। और आज साइंस भी बताती है, और हर औरत इस चीज को एक्सपीरियंस भी करती है कि उसको क्रैम्प्स भी होते हैं, बाज दफा लाइट डायरिया भी हो जाता है, हेडेक्स होने लगती हैं, इसी तरह जोड़ों में बाज दफा दर्द होने लगता है, पूरी बॉडी जैसे एक एनर्जी नहीं है, लो हो जाती है एनर्जी, फटीक होती है, बैक में पेन होने लगती है, इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं। ये तो जिस्मानी है ना, उसके अलावा आप देखें कि जो मूड स्विंग्स होते हैं औरत की तबीयत में, कितनी सारी चेंजेस आती हैं, यानी कभी इतना गुस्सा एकदम करने लगती है, कभी रोना शुरू हो जाती है, कभी एंजाइटी उसको होने लगती है, डिप्रेस रहती है, उदास उदासी, जिद कहती है उदासी है उदासी है, उदासी की वजह नहीं पता होती, लेकिन वो उसके ये जो हार्मोनल चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, यानी पीरियड्स के शुरू होने से पहले ही 2-3 दिन पहले से ये चीजें शुरू होने लगती हैं उसमें, और पीरियड्स में इस तरह की चीजें जारी रहती हैं। बल्कि बाज मर्द तो कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे लगता है तुम्हारा साइकिल शुरू होने वाला है, जिस वजह से तुम्हारे ये इतना तुम्हें गुस्सा आ रहा है। तो ये चीजें औरत के साथ लगी हुई हैं, उसके साथ ये एक समझ लें एक तकलीफ है जो उसके साथ लगी हुई है, और ये अल्लाह ताला ने उसकी रायत उसको दी है, और मर्दों को बताया है कि ये उनकी तकलीफ के दिन है। तो इसके अंदर उनके साथ ऐसा ताल्लुक रखना भी उनके लिए एक अजियत है ना, एक औरत के लिए ये अजियत है। तो अल्लाह ताला ने उसको फेवर दी है, अल्लाह ताला ने उसके लिए ये रियायत दी है, और अल्लाह ताला ने आदमियों को बताया है कि उस जाए उस जमाने के अंदर लोगों को नहीं भी ये साइंस का पता होगा, आज तो साइंस ने प्रूफ भी कर दिया, लेकिन इसका मतलब कि आदमियों को इस जमाने के अंदर औरतों को दरगुजर करना चाहिए उनसे, उनकी इस तरह की बातों को दरगुजर, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दी कि ये अजियत है उनके लिए, अजन है, तकलीफ है उनके लिए, तो आदमी को भी इस चीज को समझना चाहिए। वला तकरबुहुन्ना हत्ता यतहुर, और इनके करीब ना जाओ, यानी करीब ना जाने से मतलब क्या, उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक ना करो जब तक कि वो पाक ना हो जाए। जिस्मानी ताल्लुक से सिर्फ रोका गया, ऐसे नहीं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे मस्जिद से जाए नमाज उठा के दे दो, तो वो फरमाती मैं तो हाइजा हूं, तो फरमाया तेरा हैज तेरे हाथ में तो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि औरतें जो है ना, बाज दफा हैज के दिनों में सोचती हैं कि वो सारी चीजें, वो कुछ ऐसी चीज को पकड़ नहीं सकती, कुछ ऐसी चीज को छुएंगी तो क्या हो जाएगा। सिर्फ क्या चीज है कि जो जिस्मानी ताल्लुक है एक दूसरे के साथ, वो उस वक्त कायम करें जब वो पाक हो जाए, यानी हैज रुक जाए। फ इजा तो हर ना जब वो पाक हो जाए। देखिए अब इसके अंदर पहले यत होरन था, फिर तो हर ना जिसमें ज्यादा पाकी, वो तो पाक हो जाए यानी वो गुसल भी कर ले। बाज ने कहा है कि उससे पहले भी जायज है, लेकिन जमहूर जो मेजोरिटी उलमा है वो कहते हैं कि नहीं, उसके बाद गुसल भी करना जरूरी है। दूसरों ने कहा नहीं, गुसल कर लें तो मुस्तहब है, नहीं भी करें तो अब गुसल करने के लिए जा रही है तो तब भी उसके साथ शोहर ताल्लुक कर सकता है, मगर बेहतर और अफजल और जमहूर मेजोरिटी का क्या है, वो ओपिनियन यही है कि जब वो पाक हो जाए, मतलब वो शावर लेके गुसल करके पाक साफ हो जाए, फअतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो आओ उनके पास जहां से तुमको अल्लाह ने हुक्म दिया है। क्या मतलब इसका कि अब ये नहीं है कि तुम अब अपनी मनमानी करो, जिस जगह का तायुन अल्लाह ने कर दिया है उसी से आओ, और वो जगह क्या है वो अगली आयत में भी पता चल रही है। यानी कि पहले वक्त में ना ऐसे होता था जैसे हर एक जगह में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि लोगों के अंदर आम होती हैं, तो यहूदियों के अंदर ये चीज आम थी कि अगर औरत को साथ पुश्त की तरफ से उसके साथ ताल्लुक कायम किया तो बच्चा भेंगा होगा। और इस चीज का भी यहाँ पे अजाला हो गया, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, जो भी पोजीशन हो उसके अंदर कोई हरज नहीं है। मुसनद अहमद में है कि एक दफा हजरत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि मैं तो हलाक हो गया हूँ। आपने फरमाया क्या बात है? फरमाया मैंने रात को अपनी सवारी उल्टी कर दी। आपने कुछ जवाब नहीं दिया, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई। आपने फरमाया सामने से आओ या पीछे से आओ ये इख्तियार है, लेकिन हैज की हालत में ना आना और पखाना की जगह से ना आना। यानी इससे बात क्लियर हो गई कि वो ओपनिंग जहां से हैज आता है सिर्फ वो जायज है, और इसके अलावा जायज नहीं है कि दूसरी तरफ से आया जाए कोई आदमी ऐसा कोई काम करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने इससे मना कर दिया। एक रिवायत में आता है तिर्मिजी की है कि जो शख्स किसी औरत या मर्द के साथ ये काम करेगा उसकी तरफ अल्लाह ताला रहमत की नजर भी नहीं देखेगा। यानी मर्द के साथ ये काम करने का मतलब तो है कि कौमे लूत वाला अमल, औरत के साथ जो ये काम करेगा तो उसके बारे में भी कहा गया कि वो छोटा ये काम करने वाला, छोटा लूती। हालांकि इसको लूत अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं इसकी निस्बत करनी चाहिए, तो उनकी कौम ये काम करती थी तो, लेकिन इसी काम का एक स्मॉलर चीज उसको बताया गया कि जो अपनी बीवी के साथ भी ये काम करे। अबू दरदा फरमाते हैं ये कुफार का काम है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। तो कुफार तो जिस मर्जी तरीके को करें वो तो आजाद हैं, लेकिन एक मुसलमान जो है उनकी देखा देखी वही काम नहीं कर सकता जो काफरों को देखा करते हुए वैसे ही शुरू कर दिए काम करने। इसलिए कि मुसलमान रिस्ट्रिक्टेड है, अपनी शरीयत में बंधा हुआ है, शरीयत की बाउंड्रीज हैं जो उसको कुछ करने से मना करती हैं, उससे आगे वो उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन आज मुसलमान जो है वो देखा देखी जैसे दूसरे हैं वैसे ही उन्होंने भी चलना है अंधाधुंध। तो ये समझना चाहिए कि हमारा दीन इस्लाम जो है ना वो सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं, वो हर फेज ऑफ लाइफ में आपकी रहनुमाई करता है कि ये बाउंड्री है, इससे आगे नहीं। ठीक है, इतना एक शख्स ने आप एक शख्स ये मसला पूछता है तो आप फरमाते हैं क्या तू कुफर के बारे में सवाल करता है? उसने कहा था कि मैं क्या ये काम कर सकता हूँ, तो आपने फरमाया तुम कुफर के बारे में मेरे से पूछते हो। एक शख्स ने आपसे आके कहा कि अन्ना शे तुम का क्या मतलब है, ये अन्ना शे तुम का ये मतलब समझा कि मैं जहां से भी आ जाऊं, यानी मुझे अगली आयत में वो आ रहा है कि यानी मैं जो भी करूं तो ठीक है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर बहुत नाराज हुए, उसको बुरा भला कहा और फरमाया कि ख्वा खड़े होके ख्वा बैठ के ख्वा लेट के मगर जगह एक ही हो। ठीक है, फातू हुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो आओ उनके पास उस जगह से तायुन अल्लाह ताला ने फरमा दिया जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। ठीक है, एक और हदीस में आता है मुसनद अहमद की कि जो शख्स हाइजा औरत से जमा करे यानी इंटरकोर्स करे या गैर जगह करे यानी जो अल्लाह ताला ने जहां से मना फरमाया वहां से करे या काहिन के पास जाए और उसको सच्चा समझे उसने उस चीज के साथ कुफर किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी है। ठीक है, तो इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि ये कौमे लूत वाला अमल है और ये बीवी के साथ करना भी जायज नहीं है। इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतातहिरीन, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तौबा करने वालों से और मोहब्बत करता है तहारत रखने वालों से। यानी तौबा करने वाले यानी अगर कोई ऐसा काम कर चुका है पहले तो फिर अब वो तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। और अल्लाह ताला तहारत रखने वालों को पसंद करता है यानी तहारत करने वाले जी एक इंसान की तबीयत के अंदर हो जाता है ना कि वो पाकी को पसंद करता है, वो ऐसी चीजों को ऐसे फेल को ही पसंद नहीं करता जिसमें गंदगी है। यानी हैज के दिनों में एक औरत के साथ ये काम करना ये गंदगी है, नापाकी है, तो वो इस काम को नापसंद करता है। अल्लाह ताला ऐसी तहारत रखने वालों से मोहब्बत करता है। हालांकि ये काम सोचा जाए तो इंसान सोचता है कि ये तो बिल्कुल एक दुनियावी काम है या ये एक हैवानी अपनी ख्वाहिश है। हालांकि सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा था ये कि क्या इसके बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था कि जब मियाँ और बीवी आपस में ये ताल्लुक करते हैं तो उसके ऊपर भी उनको अजर मिलता है, तो सहाबा हैरान हो गए कि ये तो मतलब इस बात पे क्या, ये तो हम अपनी एक जरूरत पूरी कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या अगर हराम जगह पे कोई जाके ये अमल करता है तो क्या उसके ऊपर उसको गुनाह नहीं मिलेगा, यानी अपनी बीवी को छोड़ के किसी और के पास चला जाता है तो उसके ऊपर उसको गुनाह होगा ना। तो जब अपनी बीवी के साथ आके अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, अपनी जरूरत पूरी करता है, तो उसके ऊपर उसको अजर भी मिलता है, सवाब भी मिलता है, क्योंकि उसने एक हलाल जगह पे अपनी जरूरत को पूरी किया। तो आओ उनके पास जहां से अल्लाह ने हुक्म दिया। अच्छा, अब ये भी एक बात को समझ लेना चाहिए कि हैज के दिन होते हैं और समझना चाहिए औरतों को कि हैज के दिन कौन से हैं, मेरे कितने मेरे दिन हैं, यूजुअल मेरी क्या आदत है, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 8 दिन, की हर एक का मुख्तलिफ साइकिल होता है, वो उसके उसको जहन में रखना चाहिए। अगर 6 दिन किसी का साइकिल है और 3 दिन में ही आपको लग रहा है कि खत्म हो गए हैं तो जरूरी नहीं वो खत्म हुए हो, थोड़ी देर के लिए हो सकता है कि स्टॉप हुए और उसके बाद फिर जारी हो जाए, क्योंकि आपका एक आम मामूल 6 दिन का ही है। इसी तरह पहले या बाद में भी हो सकते हैं, लेट भी हो सकते हैं, कभी जल्दी भी आ सकते हैं, तो ये भी हो जाता है। और ये भी समझना चाहिए कि इस्तेहाजा में और हैज में फर्क है। इस्तेहाजा एक बीमारी है, यानी औरत को मैक्सिमम 10 दिन तक हैज हो सकता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद भी अगर खून जारी रहता है तो उसका मतलब कि उसको बीमारी है और उसको फिर हैज वाले अहकामात नहीं लगेंगे, हैज का हुक्म नहीं लगेगा उसके ऊपर। यानी वो अपने मामूल के मुताबिक नमाजें भी पढ़ेगी, वो शोहर के साथ भी अपने ताल्लुक करेगी जैसे बिल्कुल एक दूसरी औरत करती है, वो अपने आप को बस पाक ही समझे फिर, बस सिर्फ ये है कि हर नमाज से पहले वुजू नया करेगी। तो इस्तेहाजा में और हैज में फर्क समझना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं हमारे 15 15 दिन चलते रहते हैं, हमारे 14 14 दिन, 2 2 हफ्ते तक हमारे चलते रहते हैं, तो ये नहीं है कि वो 2 2 हफ्ते तक अब नमाज से सबसे फारिग होके बैठ जाए, नमाज रोजा कुछ नहीं है उनके ऊपर, ऐसा नहीं है। फिर अपनी देखनी चाहिए, एक तो इसको डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए अपना, क्योंकि ये एक सही चीज नहीं है। आपका ब्लड लॉस भी है, आपके एक तकलीफ भी है, कजियत भी है, फिर देन देर इज समथिंग रॉन्ग। बाज लोगों को इसमें कोई मतलब कोई बीमारी होती है जो यूट्रस में होती है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है, तो कुछ इलाज इसका कराया जाए, लेकिन इसके ऊपर आराम से बैठा ना जाए। और फिर आप अपने खानदान की औरतों को भी देख सकती हैं, मसलन अपनी बहनों को देख सकती हैं, अपनी वालदा को देख सकती हैं, उनके कितने दिन का हैज होता था। ऐसे नहीं कि उनको अगर 6 7 दिन का होता था तो एक को बहन को 15 दिन का हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब उसका कोई मसला है। ठीक है, तो मैक्सिमम 10 दिन है लिमिट, और उसे आप पहचानना चाहिए कि कब मेरा हैज का खून है और कब ये इस्तेहाजा का है, क्योंकि दोनों खून में थोड़ा डिफरेंस होगा। अब हैज की हालत में क्या क्या चीजें मना है, एक तो आपको पता है कि ये यहाँ पे बता दिया गया कि यानी आप जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है इसे मना कर दिया गया। इसी तरह रमजान के रोजे हैं, उनसे मना कर दिया कि रमजान के रोजे नहीं रखेगी, नफली रोजे नहीं रखेगी। और पिछली दफा एक सवाल आया था कि रमजान के रोजों का कफारा है या कत्ल का कफारा है, तो जो मुसलसल रोजे रखने होते हैं जैसे 2 महीने के रोजे हैं या इस तरह, तो अगर इन रोजों के दरमियान हैज आ गया तो फिर उसका तसलसल नहीं टूटेगा। जाहिर है वो एक नेचुरल चीज है, तो कैसे वो उसका तसलसल नहीं टूटेगा। यानी अगर लगातार रखने को कहा जा रहा है तो आप लगातार रखेंगे, बीच में हैज आ गया उतने दिन छोड़ेंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे फौरन। इस तरह हैज एक अलामत है जिससे पता चलता है कि एक बच्ची बालिग हो गई है, यानी प्यूबर्टी की जो एज है वो हैज से पता चलती है। ठीक है, अब उसके बाद एक लड़की के ऊपर नमाज भी फर्ज हो गई, रोजा भी फर्ज हो गया, चाहे वो 9 साल की है चाहे वो 10 साल की है। तो अगर किसी को 15 साल तक हैज नहीं आता तो 15 साल की उम्र भी एक प्यूबर्टी की बलूगत की उम्र समझी जाती है, कि अगर 15 साल तक किसी को हैज नहीं आया तो तब भी 15 साल पे वो अपनी सारी चीजें उसके ऊपर फर्ज हो जाएंगी। आयजा इतकाफ नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, तवाफ नहीं कर सकती, तवाफ मना है उसके लिए। हज और उमरे पे अगर गई होगी तो सिर्फ तवाफ नहीं कर सकती, बाकी हज के तमाम अरकान पूरे कर सकती है। नमाज की कजा उसको नहीं देनी, लेकिन रोजे की कजा उसको देनी होगी बाद में। अगर वो पाक साफ हो जाती है और कोई नमाज का इतना वक्त है जिसमें वो नमाज पढ़ सकती है, एक रकत भी पढ़ सकती है, तो उसके ऊपर नमाज फर्ज है। ये नहीं है कि मसलन है कि आप वो बैठी हुई आप देखेगी अब अगली नमाज का जब वक्त आएगा तो फिर ही पढ़ूंगी। यानी अब आपने जोहर के वक्त अगर आपने मतलब गुसल कर लिया तो अभी असर का वक्त होने में 5 मिनट हैं, तो आप जल्दी से फर्ज पढ़ सकते हैं। यानी कि शावर में ही आधा घंटा पौना घंटा लगा दिया कि आप जब तक निकले तो असर का टाइम हो गया, तो पाक हो गए, आप जल्दी शावर लें और जल्दी आके आप नमाज पढ़ें। इस चीज को समझना चाहिए। इसी तरह फजर के वक्त है, हम आप कहें कि नहीं आप तो क्या उठूं, अब जब उठूंगी तो तभी शावर लूंगी, अभी क्या जरूरत है, जबकि पता चल गया कि मैं पाक हो चुकी हूं, तो उसी वक्त नहा धो के और नमाज पढ़नी होगी। ठीक है, अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और तहारत रखने वालों से। तो ये एक ये तहारत के अंदर भी है, बाज लोग बहुत दिन दिन लगा देते हैं, यानी डिले करते रहते हैं गुसल करने को, यानी पाक हो भी गए पता चल गया है, लेकिन अच्छा शाम को कर लूंगी, अच्छा अभी टाइम नहीं मिल रहा, अभी तो मैं मसरूफ हूं, अब नमाजें भी गुजरती जा रही हैं। नहीं, अल्लाह को तहारत वाले लोग पसंद है, अल्लाह ताला को तौबा करने वाले लोग पसंद है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम तहारत की हालत में रहें, अपने आप को पाक साफ रखें, यानी नापाकी नापाक जनाबत की चाहे हालत है चाहे हैज की हालत है, जूं ही उससे निकलें तो फौरन गुसल करके अपने आप को पाक साफ करें। इसी तरह अपनी जो यानी प्राइवेट जो पार्ट्स के बाल हैं या ये हैं, इनको साफ करना का एहतमाम करना चाहिए ताकि आप पाक साफ रहें। तो इन चीजों के ऊपर तवज्जो इसलिए होनी चाहिए कि अल्लाह ताला तहारत वालों को पसंद करता है, गंदगी अल्लाह को पसंद नहीं है। और ये जो आजकल है ना कि कोई कोई बाबे समझे जाते हैं ऐसे गंदे तरीन वो बैठे हुए हैं और उनको समझते हैं ये बड़े पहुंचे हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं, क्योंकि वो गंदा बहुत रहता है। तो यहां से आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला को तो तहारत वाले लोग पसंद है। ये नहीं कि ये मैले कुचैले इतने लंबे बाल हुए हैं कि चुटिया बन बन के कहां तक जा रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें देखी हैं और वो बने हुए बड़े बाबे कि ये बहुत बड़े पीर साहब हैं और बहुत बड़े इनके बहुत मुरीद हैं इनके, क्योंकि देखो इनको तो कुछ अपना होश ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा कौन अल्लाह के हाँ बढ़ के मकाम वाला होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कितनी पाकीजगी वाली थी, तहारत वाली थी। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ ताल्लुक भी करते थे, तो उसके बाद अगर गुस्ल नहीं भी करते तो वुजू कर लिया करते थे। यानी ये रिकमेंडेड है, अगर कोई करे तो बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं लेकिन अच्छी बात है। तो इस चीज को समझना चाहिए कि ये जो अहकामात हैं ये हालांकि एक प्राइवेट जिंदगी से ताल्लुक रखते हैं। किसी को हैस कब खत्म हो रहा है, कब नहीं हो रहा, कोई बंद कमरों में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता है ना, या वो दो जानते हैं लोग या अल्लाह जानता है। लेकिन जब ये अहकाम दे दिए तो इनको वही फॉलो करेगा जिसको ये यकीन होगा कि एक अल्लाह की जात है जो मुझे देख रही है। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم انكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين